यादों के झरोके।
अजीज सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हाशिम अली का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, आज का प्रोग्राम माजी में आज ही के दिन यानी 6 तीर 8 ज़िलहिज्जा और 27 जून को रूनुमा होने वाले बास अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। आठ ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी कमरी को नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफे की जानिब रवाना हुए। कूफे रवानगी से 4 माह कबल वो अपने खानदान के कई अफराद के हमराह मदीने से मक्के तशरीफ लाए थे। आपने मक्के मुकर्रमा में अपने कयाम के दौरान हुज्जाज को यजीद बिन मुआविया की हुकूमत के जुल्म और जोर से आगाह किया। इस दौरान कूफे के लोगों की तरफ से कूफे आने की मुसलसल दावत और मक्के में यजीद बिन मुआविया की हुकूमत के जरिए दी जाने वाली अजियतों और साजिशों के बाइस हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। चूँकि ये हज के अय्याम थे, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने हज को उमरे में तब्दील किया और मुसलमानों को अपने सफर और मकसद से आगाह करते हुए कूफे की जानिब रवाना हुए। सत्ताईस जून सन 1839 ईस्वी को सिख सल्तनत के पहले महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ। शुमाल मगरबी बर्रे सगीर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुक्मरानी थी। रंजीत सिंह ने अपनी पहली जंग 10 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ लड़ी। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी नौ उम्री में अफगानों को निकालने के लिए कई जंगें लड़ी और 21 साल की उम्र में उनको पंजाब का महाराजा करार दिया गया। रंजीत सिंह सिख मजहब के मानने वाले थे, लेकिन वो एक सेकुलर हुक्मरान थे। उनकी पॉलिसियां तमाम बिरादरियों, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के एहतराम पर मबनी थीं। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इस्लाहात, जदीदकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और आम खुशहाली आई। उनकी फौज और हुकूमत में सिख, हिंदू, मुसलमान और यूरोपी शामिल थे। सन 1830 के अशरे में रंजीत सिंह को सेहत से मुतालिक मुतादिद पेचीदगियों का सामना न करना पड़ा, जिसकी वजह शराब नोशी और जिगर की खराबी बताई गई। बहरहाल 27 जून सन 1839 को नींद में उनकी मौत वाक़े हो गई। सत्ताईस जून सन 1910 ईस्वी को उर्दू के मुमताज तंजो मिजाह निगार कन्हैया लाल कपूर पाकिस्तान के मौजूदा शहर फैसलाबाद के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की और लाहौर में बीए और एमए की तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद कन्हैया लाल कपूर मुख्तलिफ कॉलेजों में लेक्चरार और प्रिंसिपल भी रहे। वो बहुत कामयाब तंजो मिजाह निगार थे और उनकी तसानीफ की तादाद बहुत ज्यादा है। नवीसी के बावजूद उनकी तहरीरों का मेयार नहीं गिरा। उनका मुतालिया बहुत वसी था और अंग्रेजी अदब के तंजिया और मजाहिया अदब से भी उन्हें अच्छी वाकफियत थी। कन्हैया लाल कपूर को हजारों अशार याद थे। मुल्क तकसीम होने के बाद कन्हैया लाल कपूर ने हिंदुस्तानी पंजाब के इलाके फिरोजपुर और मोगा में मुलाजमत की और वहीं मुकीम रहे। 5 मई सन 1980 को पुणे में उनका इंतकाल हो गया। छह तीर सन 1360 हिजरी शमसी को रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई पर, जो उस वक्त सुप्रीम दिफाई कौंसिल में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नुमाइंदे थे, मुनाफिकीन के दहशतगर्द गरोह एमकेओ के एजेंटों ने नाकाम कातिलाना हमला किया। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई तेहरान की एक मस्जिद में खिताब कर रहे थे कि बम का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आप शदीद जख्मी हो गए। हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई पर होने वाले इस नाकाम कातिलाना हमले के बाद अपने पैगाम में फरमाया कि इस्लामी इनकलाब के दुश्मन अब तक आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे रहे हैं, آپ کا جرم اسلام اور اسلامی ملک کی خدمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ محاذ جنگ کے ایک جانثار سپاہی، ایک دل سوز معلم، نماز جمعہ والجماعت کے شعلہ بیان خطیب اور انقلابی میدان میں ایک ہمدرد رہنما ہیں۔ آپ نے اپنی سیاسی فہم و فراست، عوام کی حمایت اور ظالموں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ستائیس جون سن 1993 عیسوی کو امریکہ نے عراق کے دارالحکومت بغداد اور اس کے نواحی علاقوں پر میزائلی حملہ کیا۔ یہ حملہ اسی سال اپریل میں سابق امریکی صدر جارج بش کے دورے کویت کے دوران ان پر ہونے والے حملے میں عراقی حکام کے ملوث ہونے کا الزام لگا کر کیا گیا۔ سن 80 کے اشرے کے آغاز سے لے کر سن 1990 تک امریکہ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین کا ایک اہم اتحادی شمار ہو تھا۔ تاہم کویت پر عراقی جارحیت کے بعد امریکہ نے بظاہر صدام کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ صدام کی حماقت کی وجہ سے امریکہ کو خلیج فارس کے ملکوں میں خوب پیر پھیلانے کا موقع ملا۔ ستائیس جون سن 1995 عیسوی کو قطر کے ولی عہد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی۔ قطر کے امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے تو ان کے بیٹے اور قطر کے ولی عہد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی کے تحت اپنے والد کو معزول کر کے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیز قطر کے شاہی خاندان نے بھی اقتدار کی اس منتقلی کی توثیق کر دی۔ شیخ خلیفہ نے جو سن 1972 سے قطر کے امیر تھے، اقتدار واپسی کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ قطر خلیج فارس کے جنوب میں اور سعودی عرب کی ہمسائیگی میں واقع ہے، نیز تیل اور گیس کے ذخائر کا حامل ملک ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔